समाचारों में फ्रांस को रद्द किए गए पनडुब्बी अनुबंध पर क्षतिपूर्ति के लिए 830 मिलियन डॉलर। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स सुरक्षा पर क्षेत्रीय वार्ता के लिए सिंगापुर में और भारत में कल शुक्रवार को जगह जगह पर प्रदर्शन। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार अनीता बरार के साथ। पिछली सरकार द्वारा अचानक रद्द किए गए फ्रांसीसी पनडुब्बी कार्यक्रम पर ऑस्ट्रेलिया एक वित्तीय समझौते पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि 830 मिलियन डॉलर का मुआवजा जहाज निर्माण नावर्ल ग्रुप को दिया जाएगा, जिसे 12 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अनुबंधित किया गया था। इस सेटलमेंट का अर्थ है कि ऑस्ट्रेलिया को कुल लागत 3.4 बिलियन डॉलर की है। श्री एल्बनीसी कहते हैं कि ये टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी बर्बादी है, लेकिन ये समझौता ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस के साथ अपने संबंधों को सुधारने में मदद करेगा।
फ्रांस इज अ की पार्टनर फॉर ऑस्ट्रेलिया। वी शेयर दोज हिस्टोरिकल टाइज गोइंग बैक टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वी शेयर common interests in a stable Indo-Pacific region. We can now reset the relationship without this clouding that relationship going into the future.
रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स 30 से अधिक क्षेत्रीय नेताओं के साथ शिखर वार्ता के लिए सिंगापुर में हैं। इस शीर्ष स्तरीय वार्ता से क्षेत्र के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों का समाधान होने की उम्मीद है। श्री माल्स ने एक गैर बाध्यकारी संधि के महत्व के बारे में बात की, जिसे 5 शक्तियों की रक्षा व्यवस्था यानी 5 पावर्स डिफेंस अरेंजमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। 50 साल पहले गठित ये इन देशों को किसी सशस्त्र खतरे या हमले की स्थिति में एक दूसरे के साथ परामर्श करने के लिए है। श्री माल्स का कहना है कि कुछ मौजूदा चुनौतियां इस संधि को आधुनिक समय की प्रासंगिकता प्रदान करती हैं।
So looking at maritime security, looking at counter-terrorism, looking at ways in which we can work together to deal with humanitarian issues in securing supply chains. All of these are fields in which we can work to give the FPDA a modern relevance, which we are really keen to do.
एंथनी एल्बनीसी ने संकेत दिया है कि श्रीलंका के नादेसलिंगम परिवार को स्थायी निवास दिया जा सकता है। नई सरकार द्वारा ब्रिजिंग वीजा दिए जाने के बाद तमिल परिवार मध्य क्वींसलैंड शहर बिलोबिलो में आ गया है। मार्च 2018 से ये तमिल परिवार विभिन्न स्थानों पर डिटेंशन सेंटर्स में था। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की 70 मौतों के साथ 25,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए हैं। इस समय अस्पताल में वायरस से पीड़ित 2,651 लोग हैं, जो जून की शुरुआत के बाद से सबसे कम आंकड़ा है। और मानव अधिकार प्रचारकों का कहना है कि वो उच्च न्यायालय के उस फैसले से निराश हैं, जो ब्रिटेन को अगले सप्ताह से शरण चाहने वालों को रवांडा वापस भेजने की अनुमति देगा। डिटेंशन एक्शन के उपनिदेशक जेम्स विल्सन का कहना है कि उनका मानना है कि प्रवासन कानून मौलिक रूप से ठीक नहीं है और शरण चाहने वालों को रवांडा जाने के लिए मजबूर किया जाएगा।
We believe just as strongly as we did, if not more so than at the start of the day, that this is an unlawful policy and that removals, while that hasn't been fully tested by the court, are absolutely unsafe in terms of human rights.
और भारत में कल शुक्रवार को देश के कई इलाकों में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। कई इलाकों में भारी संख्या में जमा प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, पथराव और कुछ स्थानों पर गोलाबारी भी हुई। भाजपा से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिंसा में आईपीएस अधिकारी सहित पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई थीं। प्रशासन ने कल देर शाम शहर के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लगा दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों में आग लगा दी गई और एक पुलिस वाहन को आग लगाने का प्रयास किया गया। वहां पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। अब तक यूपी पुलिस इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश कानपुर में, जो पिछले हफ्ते सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र था, वहां कल शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि ये महत्वपूर्ण है कि अमरीकी लोग समझें कि वास्तव में क्या हुआ था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया था। डेमोक्रेट के नेतृत्व वाली एक समिति ने पिछले साल 6 जनवरी को हुए हमले में जन सुनवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या हुआ और क्यों हुआ।
The rule of law matters in democracies, and we're seeing how the battle for the soul of America has been far from won. But I know together, and I mean this, we can unite and defend this nation, Democrat and Republican, and allow no one to place a dagger at the throat of our democracy. That's what those hearings are all about.
और अपात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 70 सेंट और भारत के 55 रुपए 13 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में, स्टटगार्ट ओपन के सेमीफाइनल में निक कैरियोस का सामना एंडी मरे से होगा। कैरियोस और मरे आखिरी बार 4 साल पहले विंबलडन में मिले थे, जब निक कैरियोस ने तीनों सेटों में अपनी एकमात्र जीत हासिल की थी। उससे पहले 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता एंडी मरी ने कैरियोस को उनके द्वारा खेले गए सभी 5 मौकों पर हराया था, जिसमें सभी 4 ग्रैंड स्लैम शामिल थे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री। एडिलेड में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में बौछारें थमेंगी, अधिकतम तापमान 9 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। कैनबरा में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।